नमस्कार भारत, आज है 25 जनवरी दिन गुरुवार। मैं हूं कुलदीप मिश्र। विवादित फिल्म पद्मावत आज होगी देश के सिनेमा घरों में रिलीज। करणी सेना ने कहा, नहीं चलने देंगे।
कोई चिंता नहीं है, न मैं गिरफ्तारी से डरूं, न आप में से कोई। हर बात सिर्फ एक, पद्मावत नहीं लगने देंगे।
करणी सेना को जानेंगे थोड़ा करीब से, क्या है उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता।
जी, ये राजपूतों के हर स्तर के मुद्दे उठाती है, और अभी जो राजपूतों के सम्मान की बात है, हर हिंदुओं के स्वाभिमान की बात है।
और दुनिया जहान में आज बात उत्तर और दक्षिण कोरिया की अदावत की।
जो नॉर्थ कोरिया था, वाज बीइंग प्रोजेक्टेड एज व्हाट इज बेस्ट इन, जो सबसे अच्छा कम्युनिस्ट सिस्टम में है, और साउथ कोरिया में व्हाट वाज बेस्ट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। संजय लीला भंसाली की विवादों में घिरी फिल्म पद्मावत आज रिलीज होगी। इसके तहत देश के कई सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल हरियाणा के गुड़गांव में स्कूली बच्चों की एक बस पर फिल्म का विरोध कर रहे लोगों की भीड़ ने हमला किया। करणी सेना समेत कुछ संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, जबकि निर्माता इससे इनकार कर रहे हैं। अमेरिका के जिम्नास्टिक टीम के पूर्व डॉक्टर लैरी नस्सार को 175 साल की सजा सुनाई गई है। नस्सार पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। केस की सुनवाई कर रही जज रोजमेरी आकिलीना ने कहा कि नस्सार जेल की दीवारों से बाहर आने लायक नहीं है। इस केस में बीते कुछ हफ्तों में करीब 160 महिलाओं की गवाही ली गई। इन महिलाओं में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी सिमोन बाइल्स समेत कई महिला खिलाड़ी शामिल रहीं। कोर्ट में लैरी नस्सार ने कहा,
have had a significant emotional effect on myself and it shook me to my core.
आपने जो कहा, इसका मुझ पर भावनात्मक असर हुआ है और मैं भीतर तक हिल गया हूँ। ऐसे शब्द नहीं हैं जो इस बात का इजहार कर सकें कि मुझे मेरी हरकत पर कितना दुख है। मेरी माफ़ी को स्वीकार करना असंभव है। मैं आप लोगों की बातों को जिंदगी भर याद रखूँगा। ये थे लैरी नस्सार के शब्द। ब्राज़ील की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दायर अपील को खारिज किया है। इस केस में बीते साल डी सिल्वा को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने एक निर्माण कंपनी से अपार्टमेंट लेकर कानून तोड़ा है। अदालत ने डी सिल्वा की सज़ा को 9.5 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया है। अदालत के फैसले से डी सिल्वा का फिर से राष्ट्रपति बनने का रास्ता बंद हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति की ब्राज़ीलियन वर्कर्स पार्टी के वरिष्ठ सलाहकार डिएगो ने बीबीसी से कहा कि डी सिल्वा के खिलाफ केस लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे न्यायपालिका के लोगों के अभियान का हिस्सा है।
What the Brazilian Workers Party understand is that this goes beyond Lula's case.
हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां न्यायपालिका संविधान को ताक पर रखकर कदम उठाए जा रही है। दूसरे ब्राज़ीली लोगों के खिलाफ चल रहे केस में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। ऐसा हम न सिर्फ डी सिल्वा के बचाव में कह रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र और कानून की रक्षा के लिए भी कह रहे हैं। ये थे डी सिल्वा की पार्टी के वरिष्ठ सलाहकार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मनागागवा ने कहा है कि वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जुलाई में पारदर्शी चुनाव कराए जाएं और वो चुनावी नतीजों का सम्मान करेंगे। बीते साल नवंबर में सेना ने राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को सत्ता से बेदखल किया था, जिसके बाद एमरसन ने सत्ता संभाली थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रॉबर्ट मुलर को इंटरव्यू देने के लिए उत्साहित हैं। अमरीका के राष्ट्रपति चुनावों में रूसी दखल की जांच का जिम्मा विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट मुलर पर है। ट्रंप ने कहा कि वो शपथ लेकर मुलर के सवालों का जवाब देंगे, हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि ये पूछताछ कब हो सकती है। शुरुआती हफ्ते में ऐसी खबरें आई थी कि मुलर अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस से जांच के संदर्भ में सवाल कर चुके हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सलाह देने के लिए बनाए गए इंटरनेशनल पैनल से न्यू मैक्सिको के पूर्व गवर्नर बिल रिचर्डसन ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने पैनल पर म्यांमार सरकार की नीतियों को लेकर चेयर लीडर जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया। पैनल के एक दूसरे सदस्य दक्षिण अफ्रीका के रॉल्फ मेयर ने कहा है कि आलोचना अनुचित और बिना सोचे समझे की गई है। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने अपने 13 बच्चों को बंधक बनाकर रखने वाले माता पिता को उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखने का आदेश दिया है। वकीलों का कहना है कि 2 से 29 साल की उम्र के जिन बच्चों को कैद में रखा गया, वो कुपोषित और दिमागी तौर पर संतुलन में नहीं है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। संजय लीला भंसाली की विवादों में घिरी फिल्म पद्मावत आज सिनेमाघरों में सुरक्षा के इंतजामों के बीच रिलीज होगी। इस फिल्म में रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। करणी सेना समेत कुछ संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म में राजपूतों के इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और रानी पद्मावती की कहानी को गलत रूप में दिखाया गया है, जबकि निर्माता इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि कानून व्यवस्था राज्य सरकारों को ही संभालनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं, कई शहरों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गुड़गांव में कल एक स्कूली बस पर पत्थर फेंके गए, कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बच्चे टूटे शीशों वाली बस में सीटों के नीचे छुपे हुए हैं और रो रहे हैं। बस में मौजूद स्कूल स्टाफ उन्हें छाती से लगाकर चुप कराने की कोशिश करता दिख रहा है। उधर फिल्म के विरोधी अपनी जगह अड़े हुए हैं। करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी दी। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो डालकर दावा किया कि 8 राज्यों में यह फिल्म अलग अलग कारणों से नहीं चलने वाली है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
हमारे दिल में कितनी ज्वाला है कोई देखना चाह रहा है? फाड़ के दिखा देंगे, कोई चिंता नहीं है। न मैं गिरफ्तारी से डरूं, न आप में से कोई। हर बात सिर्फ एक, पद्मावत नहीं लगने देंगे। सौभाग्य 8 राज्य लगभग बंद हो चुके हैं। फिल्म हॉल वालों ने गुजरात में मना कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राजस्थान में मना कर दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपील कर दी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो आवाज उठी है वो लोगों की तरफ से भी हॉल वाले समझ रहे हैं। बिहार में बंद हो चुकी है ये 24 घंटे। मैं मान रहा हूं हर उस बलिदान का समय है, जो बलिदान देना हो। मैं न तो गिरफ्तारी से डर रहा हूं न गोली से।
ये थे करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी। लेकिन क्या पद्मावत फिल्म में वाकई ऐसा कुछ आपत्तिजनक है जिसे लेकर इस स्तर का विरोध किया जाए? हमारे साथी वात्सल्य राय ने स्पेशल स्क्रीनिंग में इस फिल्म को देख चुके बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी से यही सवाल किया।
इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने 3 दिन पहले कुछ संपादकों के लिए दिल्ली में एक विशेष ये स्क्रीनिंग आयोजित की थी, जिसमें मैं गया था, और इतना बवाल हो गया है, इतना हिंसा भी हो रही है, आगजनी हो रही है इस फिल्म को लेकर के। लेकिन अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि उसमें विवाद वाले तंतु क्या थे, तत्व क्या थे, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि विवाद किस में हो सकता है, क्योंकि ये पूरी फिल्म मेरे लिहाज से राजपूती आन बान और शान का बखान करती है। कई बार जो कहानियों में जो बहुत अतिशयोक्ति होती है, उस तरह की अतिशयोक्ति भी इसमें है, क्योंकि एक कहानी है जो संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई है, वो कहानी की तरह बनाई है और उसको अपने तरीके से, जिस तरीके से वो कहानी कहते हैं, उस तरीके से उसको बनाया गया है। फिल्म में राजपूत करणी सेना का सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो इसी बात को लेकर के है कि एक मुस्लिम शासक यानी अलाउद्दीन खिलजी, वो किस तरह से एक राजपूतनी, एक क्षत्राणी के साथ उसके संबंध कैसे दिखाए गए हैं। मैंने पूरी फिल्म देखी बैठ करके, मेरे साथ और भी लोग थे, इसमें इस तरह के कोई संबंध दिखाए नहीं गए हैं। यानी अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा रहे रणबीर सिंह ने, वो एक बार भी आमने सामने नहीं होते हैं पद्मावती के साथ, यानी जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने किया है। तो ये किस तरह से इसमें विवाद उपजा और क्या गलतफहमी पैदा हुई, ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है खुद ब खुद दूर हो जानी चाहिए।
संजय लीला भंसाली की पिछली फिल्मों की बात करें, उन्हें लेकर भी कई सारे विवाद हुए हैं, लेकिन संजय लीला भंसाली बड़ी फिल्में, भव्य फिल्में बनाने के लिए जाने जाते
जी,
हैं।
जी बिल्कुल, इसी के लिए वो जाने जाते हैं। उनका एक ग्रामर है, सिनेमा कहने का एक तरीका है। ये फिल्म मैंने 3D चश्मा पहन करके देखी तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप खुद उन कैरेक्टर्स के बीच में खुद खड़े हुए हों। ऐसा लगता है कि रणभूमि में जब हाथी और घोड़े एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, तलवारें लेकर के सैनिक एक दूसरे के रण में चिंघाड़ते हुए घुसते हैं, तो उस वक्त आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद रहते हैं। उसी तरह से जो भव्य सेट्स हैं, जो संजय लीला भंसाली का स्टैंप जिसे कहते हैं डायरेक्टर के तौर पर, वो इस पूरी फिल्म में दिखता है। ऐसा भव्य सेट्स लगाए हुए हैं, बड़े बड़े किले और अंदर की जो अंतःपुर है जिसमें दिए जले होते हैं और जिसमें फव्वारे लगे होते हैं। ये कहने के बाद मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये दरअसल एक बॉलीवुड की सामान्य सी फिल्म है, इससे भी और ज़्यादा भव्य फिल्में बनी हैं पहले। ऐसा नहीं है कि ये न भूतो न भविष्यति वाली फिल्म नहीं है। आपको मनोरंजन के लिए अगर जाना है तो मनोरंजन आपका ये फिल्म करेगी।
फिल्म देखने के बाद उसके बारे में बता रहे थे राजेश जोशी। फिल्म पद्मावत करीब 200 करोड़ रुपए के खर्च में बनी है। विवाद के बाद CBFC के कहने पर इस फिल्म के 5 सीन काटे गए। इसके पहले इस फिल्म का नाम भी पद्मावती से बदलकर पद्मावत कर दिया गया था, लेकिन विवाद अब भी जारी है। हिंसा की आशंका में कई थिएटर मालिक कथित तौर पर फिल्म के प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं हैं। खबर है कि राजस्थान में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फिल्म न दिखाने की बात कही है। ऐसे में बॉलीवुड के केंद्र मुंबई में कैसा माहौल है, वात्सल्य राय ने मुंबई में मौजूद हमारी सहयोगी सुप्रिया सोगले से पूछा।
प्रोड्यूसर्स ने चुप्पी साध रखी है, वो कुछ इस मामले में अब कुछ बयान जारी नहीं करना चाहते। फिल्म रिलीज हो रही है और मुंबई की बात करें तो हर एक सिनेमा घर के बाहर पुलिस अच्छी खासी तैनात कर दी गई है। संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण को सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है और कल लॉ एंड ऑर्डर के तहत कुछ हिरासत में भी लिया गया था। मुंबई में अच्छी खासी रिलीज हो रही है, करीबन 140 स्क्रीन्स में रिलीज होने वाली है फिल्म। महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी फिल्म रिलीज हो रही है।
ये थी मुंबई से सुप्रिया सोगले। फिल्म पद्मावत के विरोध से जो संगठन सबसे ज्यादा चर्चा में आया है वो है करणी सेना। इस संगठन का असर किन क्षेत्रों में है और ये कैसे काम करता है, सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
पद्मनी के सम्मान में
हर हिंदू के राज में
सरकार तेरी दादागिरी नहीं चलेगी।
बुलंद होते नारों के बीच जब वे राजपूती आन बान शान का बखान करते हैं तो हुजूम की आंखों में गुजरे दौर के किले महलों का इतिहास उतर आता है। जैसे ही संदेश मिला हुजूम जयपुर में एक सिनेमाघर के सामने जमा हो गया। इस हुजूम में शामिल जैसलमेर का त्रिलोक कहता है करनी सेना अच्छा काम कर रही है।
जी ये राजपूतों के हर स्तर के मुद्दे उठाती है और अभी जो राजपूतों के सम्मान की बात है, हर हिंदुओं के स्वाभिमान की बात है, गौरव की बात है, प्रत्येक समाज को प्रत्येक धर्म को अपनी संस्कृति अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ता है। BJP है वो अपनी राजनीति करती है, करनी सेना का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। यह पर्दे के पीछे रहकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है।
वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है लेकिन सियासत करनी सेना के पीछे हाथ बांधे खड़ी नजर आती है। करनी सेना ने राजपूत बहुल इलाकों में अपनी पकड़ बना रखी है और अब दूसरे राज्यों में भी अपने पैर पसार लिए हैं। वहां उन्हें प्रवासी राजस्थानी मदद करते हैं। करनी सेना का इतना विकास और विस्तार हुआ कि वो अब 3 भागों में बंट गई है। वे हिंदुत्व की बात करते हैं और आरक्षण में बदलाव के हिमायती हैं। राष्ट्रीय करनी सेना के सुखदेव गोगामेड़ी कहते हैं,
क्षत्रिय समाज के युवाओं की मैं भावनाओं को समझता हूँ। जो सामान्य वर्ग के जो युवा हैं आरक्षण से वंचित हैं उनके लिए भी हम मूवमेंट चालू कर रखा है। जैसे SC और ST में आज 78% आरक्षण से वंचित लोग हैं। SC और ST में जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा, आज BPL रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके लिए भी हम ये मूवमेंट चला रहे हैं कि इस आरक्षण की व्यवस्था की एक बार समीक्षा होनी चाहिए देश के अंदर।
जब भी कोई भावनात्मक मुद्दा मिलता है करनी सेना मैदान में आ डटती है। करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना कहते हैं, यह युवकों पर केंद्रित संगठन है। कुछ राजपूत युवकों को आरक्षण व्यवस्था में परिवर्तन की बात अच्छी लगती है। करनी सेना के विरोध प्रदर्शन में शामिल दलपत कहता है,
रोजगारी कमी आरक्षण की वजह से हो रही है और उसका कोई कारण नहीं है। राजपूत व्यक्ति अपनी समृद्धि पूरी दिखा रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति से ही कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण की कमी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे।
करनी सेना ने बड़े बड़े आयोजन किए, आखिर इसके लिए साधन पैसा कौन देता है? करनी सेना के अजीत मामडोली कहते हैं, ना तो उनका कोई कोष है ना कोई कोषाध्यक्ष। इस बारे में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कहते हैं,
साधन पैसे अगर इधर उधर जाना हो, प्लेन से भी जाना हो, तो मेरे जो कार्यकर्ता हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तहसील लेवल के, वो अपने स्तर पर मैनेज करते हैं। वो चाहे 50-50 रुपए करके करें, चाहे 20-20 रुपए करके करें, चाहे 100-100 रुपए करके करें, ये हम हमारे कार्यकर्ताओं से ही इस मूवमेंट को चला रहे हैं अभी तक। तो
प्रेक्षक कहते हैं कि राजनीतिक दलों ने खुद को चुनाव लड़ने और सरकार चलाने तक महदूद कर लिया है। ऐसे में जातिगत संगठनों को विस्तार का खुला मैदान मिल गया है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
नारायण बारेठ ने ही जयपुर में कुछ आम लोगों से भी बात की और उनसे पूछा कि पद्मावत को लेकर हो रहे विवाद पर उनकी राय क्या है।
सर रिलीज होनी चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, पर कुछ जो तथ्य हैं उसमें जो मान्य है और कोर्ट को ये दिखानी चाहिए, मतलब एक वो बनानी चाहिए कमेटी, पिक्चर दिखानी चाहिए कमेटी को और फिर उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। सर मैं देखने नहीं जाऊँगा वैसे, पर क्योंकि शौक भी नहीं है पिक्चर देखने का, पर लगती है तो पब्लिक को देखनी भी चाहिए और जो नहीं देखने के इच्छुक वो नहीं भी देखें, इसमें कोई वो नहीं।
मैं तो चित्तौड़ से हूँ तो मैं मूवी के अगेंस्ट हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारी हिस्ट्री जो है चित्तौड़ की वो गलत बताई गई है उसमें, तो नहीं देखेंगे हम।
विचार वही फ्रीडम सभी को होना चाहिए, जो अपनी मर्जी से कुछ भी देखना चाहे वो देख सकता है, नो कोई भी पिक्चर रिलीज होनी चाहिए बस ये, क्योंकि किसी ने इतना बजट किया है तो कुछ तो किया है तो उसके ऊपर होनी चाहिए।
ये थी फिल्म पद्मावत पर जयपुर के कुछ आम लोगों की राय। अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। विकास त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ खास है आज के अखबारों में?
कुलदीप, आज रिलीज हो रही जो पद्मावत फिल्म है इसके विरोध की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर
ये पद्मावत छाई हुई है।
इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पहली खबर के बीच में उन्नी का कार्टून है जिसमें एक बच्चे का सवाल है कि इस गणतंत्र दिवस पर कितने मुख्यमंत्रियों के घुटने सीधे रहेंगे। जिन सरकारों पर उपद्री तत्वों पर सख्ती नहीं बरतने का आरोप लग रहा है, इस कार्टून के जरिए उन्नी ने उन पर तंज किया है। इसी खबर के बगल में गुड़गांव में जिन स्कूली बच्चों की बस पर हमला हुआ था वो तस्वीर है, और इंडियन एक्सप्रेस ने इसका जो शीर्षक लगाया है वो लगाया है बच्चों की स्कूली बस पर पत्थर फेंकने की आज़ादी। बाकी अखबारों ने भी इसको लेकर इसी खबर को कवर किया और अलग अलग हेडिंग लगाई है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि सिस्टम का जौहर। दैनिक भास्कर अखबार की हेडिंग है कि 8 राज्यों में हिंसा, गुड़गांव में बच्चे से भरी स्कूली बस पर पथराव, दिल्ली नोएडा में तोड़फोड़। इसके अलावा द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की पहली खबर है अमित शाह का बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी अकेले लड़ेगी।
एक खबर जनसत्ता में मैं देख रहा हूं जिसका शीर्षक है 20 बैंकों को मिलेगी 88,000 करोड़ रुपए की पूंजी। सरकार ने अर्थव्यवस्था में कर्ज उपलब्धता बढ़ाने के लिए और आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए ये फैसला लिया है। जी विकास।
जी, जनसत्ता में ही एक दूसरी खबर यह है कि अमरीकी ड्रोन हमले में हक्कानी कमांडर और 2 अन्य आतंकी मारे, ये अखबार की हेडिंग है। अखबार के पहले पन्ने की खबर है कि दावोस में मोदी के भाषण को चीन ने सराहा। इसी के बराबर में खबर है आप विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इंकार। अखबार की एंकर खबर है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि राम को किसी धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए।
अपने सामने देख रहा हूं तो ये स्थापना दिवस के 67 साल बाद बुधवार को जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था, यहां उपराष्ट्रपति बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि राम को किसी धर्म या जाति से जोड़कर न देखा जाए। लोग राम के बारे में चर्चा करते हैं लेकिन मजहब से ना जोड़ा जाए, राम का अर्थ समझें, रामराज का अर्थ शांति फैलाना और जातिगत लड़ाई से दूर रहना है।
अमर उजाला अखबार की पहली खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है जिसमें अखबार लिखता है कि पाइपलाइन तक 150 फुट लंबी सुरंग बनाकर पेट्रोल चोरी। ये तेल चोरी का होता था और इसमें जब चोरी हो रही थी उस दौरान धमाका हो गया जिससे इस बारे में पता चला। इसके अलावा लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीसरे मामले में जो 5 साल की सजा हुई है
वो उसको ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर।
मेरे पास हिंदुस्तान अखबार में एक खबर है कि भारतीय कंपनियों पर साइबर हमले बढ़े हैं और अखबार लिखता है कि भारतीय कंपनियों में धोखाधड़ी और साइबर हमले की घटनाएं सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। पिछले साल करीब 84% भारतीय कंपनियों ने साइबर हमला झेला।
जनसत्ता अखबार ने ही फिल्म पद्मावत की एक फिल्म समीक्षा छापी है। रविंद्र त्रिपाठी की ये समीक्षा है जिसका शीर्षक है निर्माण बेहतर विचार कमजोर। इसके अंदर क्या लिखा है ये बताने का भी हमारे पास पूरा समय नहीं है लेकिन इसका शीर्षक ये है कि इस फिल्म का निर्माण बेहतर है और विचार कमजोर है। बहुत शुक्रिया विकास त्रिवेदी अखबारों की समीक्षा के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में आज कन्नड़ संगठनों ने बंद बुलाया है। ये संगठन गोवा के साथ महादाई नदी के पानी बंटवारे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। प्रदेशव्यापी बंद को देखते हुए 55,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अहम ये है कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इस बंद से दूर रखा है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
जब भी कोई बंद बुलाया जाता है तो विरोध पक्ष उसका समर्थन करता है लेकिन राज्य की प्रमुख विरोधी पार्टी बीजेपी उसका समर्थन नहीं कर रही है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि कर्नाटका और गोवा के बीच महादाई पानी बंटवारे पर बीजेपी बड़ी नाजुक परिस्थिति में पड़ गई है। महादाई विषय पर बीजेपी ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ बातचीत का मामला छेड़ा था लेकिन गोवा में दूसरे राजनीतिक दलों ने साथ नहीं दिया। इसके अलावा कन्नड़ा संगठनों ने उस दिन बंद बुलवाया है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मैसूरू में विधानसभा चुनाव के लिए सार्वजनिक यात्रा संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो क्या बंद के रहते हुए सार्वजनिक बैठक रद्द कर दी जाएगी? बीजेपी प्रवक्ता एस प्रकाश ने कहा,
ये
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सरकार का बुलवाया हुआ बंद है। हमारी सार्वजनिक बैठक को अमित शाह बाकायदा संबोधित करेंगे। सार्वजनिक बैठक शाम को नहीं होगी बल्कि ठीक 2:30 बजे होगी। ये थे बीजेपी के एस प्रकाश के शब्द। तो क्या कन्नड़ा संगठनों ने सिद्धरामैया के कहने पर बंद बुलवाया है और क्या अमित शाह की सार्वजनिक बैठक को रोकने की कोशिश है? कन्नड़ा संगठनों के नेता वटाल नागराज कहते हैं,
अमित शाह को
इस बंद से अमित शाह की सार्वजनिक बैठक का कोई संबंध नहीं है। ये बंद इसलिए बुलवाया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादाई विषय में हस्तक्षेप करें और निराकरण करें। ये थे वाटल नागराज के शब्द। कन्नड़ा संगठनों के नेताओं का कहना है कि जब बंद का निर्णय लिया गया, अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी, तो बंद के लिए सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है? राज्य के ADGP लॉ एंड ऑर्डर कमल पंत ने कहा,
जो बंद का कॉल दिया गया है उसके मद्देनजर पूरे स्टेट के अंदर पूरा पुलिस डिप्लॉयमेंट रहेगा और हमारा जो सिविल फोर्स है 65,000 प्लस से ज्यादा पूरा डिप्लॉयड है।
मतलब ये कि आज के बंद में ये देखना होगा कि बंद शांतिपूर्ण रहेगा या नहीं, खासकर मैसूरु में। और शाम तक हमें ये भी पता चल जाएगा कि कन्नड़ा संगठन 4 फरवरी को फिर एक बंद बुलवाने वाले हैं या नहीं। 4 फरवरी का ये महत्व है कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की एक और सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
अब वक्त है हमारी साप्ताहिक पेशकश दुनिया जहान का। उत्तर और दक्षिण कोरिया दो देश कैसे बने और कई समानताएं होते हुए भी उनके बीच ये बड़ा फासला कैसे आ गया, दुनिया जहान में इस बार आदर्श राठौड़ ने इसी की पड़ताल की है।
दुनिया जहां पिछले साल उत्तर कोरिया ने जब जब बम या मिसाइल परीक्षण किए, वहां के सरकारी चैनल की चर्चित महिला एंकर की ये नाटकीयता भरी आवाज कई बार सुनने को मिली। पिछले कुछ महीनों में उत्तर कोरिया और उसके शासक किम जोंग उन कभी हथियारों के परीक्षण के लिए चर्चा में रहे, तो कभी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुबानी जंग के लिए। मगर साल 2018 की शुरुआत में नाटकीय मोड़ तब आया जब किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया में होने जा रहे शीत ओलंपिक खेलों में अपने खिलाड़ी भेजने की पेशकश की। उम्मीद जगी कि कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ रहा तनाव अब कम होगा। दोनों देशों का इतिहास एक है, भाषा एक है, संस्कृति एक है, फिर भी दोनों के बीच का तनाव पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मगर सवाल उठता है कि आखिर दोनों के बीच खटपट की शुरुआत हुई कहां से? प्राचीन काल में कोरियाई प्रायद्वीप में कई राजनीतिक मानचित्र बदले, मगर सांस्कृतिक तौर पर ये एक ही रहा। 1910 में कोरिया में जापान का नियंत्रण हो गया। JNU में सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर नीरजा समाजदार बताती हैं,
दशकों से जापानी हस्तक्षेप जो रहा है, जो 1910 से में से जो कोरिया को कॉलोनी के रूप में बना लिया गया था, जापान के द्वारा कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों का काफी दबाव किया गया था। इन सब के बाद 1945 में जब विश्व युद्ध हुआ, उसमें जापान की हार हुई और कोरिया को स्वतंत्रता मिली थी।
मगर ये आजादी पूरी आजादी नहीं थी। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में सहमति बनी कि सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन 5 साल तक कोरिया की देखरेख करेंगे और फिर उसे स्वतंत्र किया जाएगा, मगर कोरियाई लोग तुरंत आजादी चाहते थे। मई 1946 में 38th पैरेलल लाइन के आर पार जाने के लिए परमिट की व्यवस्था कर दी गई। इस रेखा के ऊपरी हिस्से पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और दक्षिणी हिस्से पर अमरीका का। शीत युद्ध की राजनीति ने कोरिया का विभाजन कर दिया। 1948 में दो नए देश बने, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 90 के दशक में उत्तर कोरिया में भारतीय डिप्लोमेट रह चुके जगजीत सिंह सपरा बताते हैं,
जो नॉर्थ कोरिया था वाज बीइंग प्रोजेक्टेड एज व्हाट इज बेस्ट इन, जो सबसे अच्छा कम्युनिस्ट सिस्टम में है, और साउथ कोरिया में व्हाट वाज बेस्ट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम।
इस बीच 1950 में उत्तर कोरिया के नेता किम इल सुंग ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। माना गया कि उत्तर कोरिया के पीछे रूस और चीन का हाथ था। इस युद्ध में कई मोड़ आए।
पहले जब उत्तर कोरिया ने हमला किया तो आसानी से दक्षिण कोरियाई सेना को हरा दिया।
इस बीच अमेरिका की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए सेना भेजने का फैसला किया। अक्टूबर में अमेरिकी जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं आईं और उन्होंने उत्तर कोरियाई सेना को वापस खदेड़ दिया। अब लगभग पूरे उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र का नियंत्रण था, मगर नवंबर 1950 में चीन की पीपल्स वॉलंटियर्स आर्मी ने हमला कर दिया और अमरीकी सेना को दक्षिण कोरिया में बहुत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीका ने और सैनिक भेजे और चीनियों को 38 पैरेलल लाइन तक वापस भेज दिया। ये युद्ध 3 साल तक जारी रहा। 27 जुलाई 1953 को कोरियाई युद्ध खत्म हो गया, मगर क्या दोनों देशों ने इस तनाव को दूर करने की कोशिश नहीं की? जगजीत सिंह सपरा बताते हैं।
जो साउथ कोरियन के लीडर थे किम डो डेजोंग, उन्होंने सनशाइन पॉलिसी किया। ही इवन विजिटेड नॉर्थ कोरिया और फिर साउथ कोरियन कंपनीज वर एट केसोंग जो बॉर्डर टाउन है वहाँ पर काफी बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया हुआ था वेयर नॉर्थ कोरियन वर्कर्स यूज्ड टू कम एंड दिस इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किम जोंग उन फादर किम जोंग इल।
इस तरह की कोशिशें कभी सिरे क्यों नहीं चढ़ पाई? 5 साल तक दक्षिण कोरिया में भारतीय डिप्लोमेट रहे शशांक बताते हैं।
दक्षिण कोरिया में कुछ पार्टी चाहती है कि एक कठोर स्टैंड लेना चाहिए उत्तर कोरिया के साथ में, तब उस तरह से बात की जा सकती है। दूसरा, ये जो आजकल के वहाँ पे राष्ट्रपति हैं वो इस तरह के विचार रखते हैं कि एक थोड़ा सा इलास्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया चाहता है कि वहाँ रेजिम चेंज ना हो।
मगर दोनों देशों के बीच रिश्ते तब से और भी खराब हो गए हैं जब से उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया। पिछले दिनों परमाणु युद्ध तक की आशंका जताई जा रही थी, मगर जेएनयू में सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर नीरजा समाजदार कहती हैं,
कोई अगर मित्र ऐसा हो जो कि कुछ अलग सोचता है, ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही सोचता है, और इसी चीज को हम बाकी मित्र नहीं पसंद करते हैं। अब वो जो मित्र हुआ जो अलग सोचता था, उसको इनसे खतरा फील होता है, उसको ये लगता है कल को ये पीठ पीछे अगर चक्कू फूंक देते हैं तो मेरे पास भी एक हथियार होना चाहिए।
दोनों देशों के नेता और लोग एकीकरण की बात करते हैं, यानी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को मिलाकर एक कर देने की। दक्षिण कोरिया में एकीकरण के लिए अलग से मंत्रालय भी बना हुआ है, मगर क्या दोनों देशों का विलय हो पाएगा?
किस तरीके का कोरिया द्वीप बनेगा अगर आपस में जुड़ जाते हैं? क्या वो कैपिटलिस्ट होगा, क्या वो कम्युनिस्ट होगा, किस प्रकार का वो होगा? तो एक प्रकार से मैं यही कहूंगा कि कई बार उत्तर कोरिया को लगता है कि वहाँ पे रेजिम चेंज का प्रयास हो रहा है, चलता रहा है, आगे भी होगा।
हाल ही में बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव दक्षिण कोरिया गए थे। विलय को लेकर वहाँ के लोग सोचते क्या हैं?
जो नई पीढ़ी है दक्षिण कोरिया में, वो ये कहती है कि उत्तर कोरिया हमसे बहुत कट चुका है, वहाँ पर विकास बहुत पीछे है, इसलिए उत्तर कोरिया के साथ मिलना दक्षिण कोरिया के हित में नहीं होगा।
जानकार मानते हैं कि राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के ज्यादा करीब नहीं आना चाहेगा।
नॉर्थ कोरिया भी ज्यादा नहीं इनके साथ आएगा, क्योंकि ये साउथ कोरियन जो सिस्टम है वो ज्यादा लोगों को पता लगे हैं, तो वो भी अपना संभल के रिलेशंस बनाएंगे।
ऐसे में इस संकट का हल क्या है? क्या उत्तर और दक्षिण कोरिया को आपस में सहयोग बढ़ाने दिया जाए और बाकी देश उनके मामले में दखल ना दें? पूरी दुनिया को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच शीत ओलंपिक खेलों के बहाने जो बातचीत शुरू हुई है वो आगे बढ़ेगी और इसका कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम जरूर निकलेगा।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर सुनिए मुख्य समाचार विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। संजय लीला भंसाली की विवादों में घिरी फिल्म पद्मावत आज रिलीज होगी। इसके तहत देश के कई सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल हरियाणा के गुड़गांव में स्कूलों बच्चों की इस बस पर फिल्म का विरोध कर रहे लोगों की भीड़ ने हमला किया था। अमेरिका के जिम्नास्टिक टीम के पूर्व डॉक्टर लैरी नस्सार को 175 साल की सजा सुनाई गई है। नस्सार पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रॉबर्ट मुलर को इंटरव्यू देने के लिए उत्साहित हैं। अमरीका के राष्ट्रपति चुनावों में रूसी दखल की जांच का जिम्मा विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट मुलर पर है। ट्रंप ने कहा कि वो शपथ लेकर मुलर के सवालों का जवाब देंगे। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने अपने 13 बच्चों को बंधक बनाकर रखने वाले माता पिता को उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखने का आदेश दिया है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया अजीत सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया अभिजीत श्रीवास्तव ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।